कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भद भक्ताय अभी श्रीमान हमारे भक्ति वेदांत महाराज जी संक्षेप और सार रूप में शास्त्रों का विचार आपको उनको समझे। कलियुग में भगवान के नाम के अतिरिक्त कलिजी कुछ कर नहीं सकते। कलियुग किसको कहते हैं? कलहम लाजु, जो कल बिना बात का बात, स्त्री और पत्नी में, पत्नी और पति में बिना किसी कारण का कलह हो जाए, डाइवोर्स हो जाए, बाप और बेटे में बनती नहीं, कभी बेटा गोली मार देता है बाप पिता को और कभी पिता बेटे को मार देता है, बिना कारण से कलह होना इसी का नाम है कलियुग। इसलिए शास्त्र में बतलाया परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी या सुख गोस्वामी प्रायण अल्प आयुष सभ्य कलास्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य। कली काल में एक तो आयु बहुत छोटी और मंद, मंद माने खराब, उनका जीवन ही मंद है, बुद्धिहीन है, अज्ञानीहीन और सुमंद मतयो, मति भी बुद्धि भी बहुत थोड़ी सी, शुद्ध शुद्ध विचार करने वाली नहीं और मंद भाग्य, बहुत परिश्रम करने पर भी सुख नहीं और शांति नहीं मिलती और उपद्रवता, सब समय विपत्तियां लगी हैं, ये कलयुग है। इसलिए 60,000 ऋषि लोग प्रश्न कर रहे हैं सुख गोस्वामी से, ये हमारा आत्म कल्याण कैसे होगा? हे साधु, हे महात्मन, ब्रूहिणा श्रद्धाधाना, हम लोग श्रद्धालु हैं, जेन आत्मा संतुष्ट, हमारी आत्मा कैसे प्रसन्न हो? शरीर के लिए नहीं, शरीर एक कपड़ा है, फट जाएगा, हाड़ मांस रक्त पैखाना और पेशाब की थैली है, आत्मा इसमें निवास कर रहा है, मैं आत्मा मने मैं, और इसमें परमात्मा भी कृष्ण के रूप में है, ये सभी लोग निवास कर रहे हैं। निवास कर रहे हैं जो जी जन्म ले करके, मनुष्य जन्म ले करके अपने को और भगवान को जान लिया उसका जीवन सार्थक है, नहीं तो पशुओं से भी गया पिता, पशुओं में भी गधा है, उसका जीवन निरर्थक जाता है। इसलिए महान व्यक्ति वैष्णव आप कृपा करके ये बतलाइए कलयुग में हमारी आत्मा कैसे सुप्रसन्न हो। उन्होंने बड़े प्रसन्न होकर के बतलाया क्या, सबई पुरुषां परो धर्मो यतो भक्ति रथो करे मनुष्य मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए, पुरुष स्त्री बाल बच्चे की पतंग गधा घोड़ा जितने हैं, यहाँ तक जितने भी देवता लोग हैं, सब के लिए एक ही मात्र परम धर्म है। परम धर्म क्यों कहा? हमारे शास्त्रों में अभी बतलाया हमारे रोहिणी नंदन जी, धर्म अधर्म कुछ भी मत करो, राधा कृष्ण का भजन करो। धर्म उसको कहते हैं जैसे स्त्री का धर्म है पति के आदेश को पालन करना, उसकी सेवा, पति का कर्तव्य है कि स्त्री को सब प्रकार से अपनी संगिनी बना करके उचित सम्मान देते हुए संसार धर्म का निर्वाह करना। पुत्र का कर्तव्य है पिता के आदेश को मानना, पिता का कर्तव्य है कि अपने बेटे को भक्त बनाए, वैष्णव बनाए, ये सब धर्म है। तरह तरह के धर्म है, समाज के प्रति धर्म है, देश के प्रति धर्म है, सबके प्रति एक धर्म है, किंतु परम धर्म नहीं है। जीविका निर्वाह करने की एक कला है ये। परम धर्म किसको कहते हैं? उसी को कह रहे हैं सवई पंसान परो धर्म या परम धर्म। क्या? भक्ति अधोखजे अहेतु क्या प्रतिहता जयात्मा संप्रसिद्धि। जो परम पुरुष हैं, जो कि अमांग मन सो गोचर प्रभु हैं, सर्वशक्तिमान हैं, रस के समुद्र हैं, कृपा के समुद्र हैं, जो आंखों से और इंद्रियों से जिनको नहीं समझा जा सकता, ऐसे परम पुरुष में भक्ति होगी। इसमें कुछ बातें विचारणीय हैं, उस पर थोड़े से मैं विहंगम दृष्टि से विचार करके आप लोगों को बताऊं। एक, यदि व्यक्ति है तो उसमें गुण होता है। यदि कोई वस्तु निराकार होती है, उसका आकार ही नहीं है, तो वो सुनेगा कैसे, करेगा कैसे? इसलिए ये परम पुरुष निराकार नहीं है। निराकार कभी कभी इसलिए कहा गया कि जागतिक आकार, सच्चिदानंद उसका आकार, उसका कभी जन्म नहीं है, मरण नहीं है, नित्य काल है, बहुत सुंदर है, बहुत विभाग। कुछ कुछ लोग कहते हैं कि वो तो निराकार है। अरे भाइयों, ये निराकार शब्द में से आकार निकाल दो तो क्या रह जाएगा? कुछ रह नहीं जाएगा। और निराकार में से नी निकाल दो तो क्या रह जाएगा? इसलिए आकार ही मूल रूप है, और रूप और निकाल दो और रूप रह जाएगा। बिना रूप के अरूप निराकार नहीं बनेगा। निर्गुण ये उपाधि है, ये रोग है, उसमें से निकाल दो गुण से, निर्गुण से निकाल दो नी को तो क्या रह गया? इसलिए भगवान में गुण है, उनका रूप है, आकार है। ऐसा मत सोचो जो जितने आकार होते हैं वो मरणशील जन्म लेने वाले होता है, ऐसा नहीं। कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, क्या हुआ? अवतार उतरते हैं ऊपर से, उनका नित्य आकार है, इसलिए कृष्ण निराकार निरंजन नहीं है, उनका आकार है। कितने मधुर हैं, इतने आकर्षक हैं, जीव मात्र को आकर्षण करने वाले, सब जीवों के हृदय में रमण करते हैं, इसलिए उनका नाम राम। इसलिए कृष्ण निर्गुण निराकार निरंजन नहीं है। यदि वो रूप ही नहीं ले सकते तो भगवान क्या है? यदि उनका आकार नहीं होता तो उनमें दया कहां से आती? इसलिए हमारे जो भगवान हैं वो बड़े दयालु हैं। ब्रज में आकर के बच्चे के रूप में खेलते हैं, गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लेते हैं और वो करवट नहीं ले पाते हैं। जो यशोदा मैया उनको करवट न फिराए तो करवट नहीं फेर सकते, अपने खा नहीं सकते हैं, स्तन पिलाती हैं उनको। एक ही साथ में मुक्त और सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ हैं, ये पूर्ण पुरुष। मन के द्वारा उनको पकड़ नहीं सकते, स्थूल इंद्रिय से उनको कुछ आप छू नहीं सकते, ऐसे हमारे ऐसे जो कृष्ण हैं। इसी के लिए कहा गया बदन्ति तत्व विदस तत्तम जद व्याम। ये कौन है? ये कृष्ण ही है। उन्हीं को कभी ब्रह्म के रूप में देखो, ज्ञानी लोग ब्रह्म के रूप में देखते हैं, योगी लोग परमात्मा के रूप में देखते हैं, और उन्हीं को भक्त लोग भगवान के रूप में देखते हैं। वही उसी के लिए कहा गया एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान, ये कृष्ण ही स्वयं भगवान, भगवत्ता की मूल है, जितने अवतार इन्हीं से निकलते हैं, इसलिए कृष्ण का एक भजन कर लिया जाए तो सबका फल मिलेगा, ये विश्वास होता है। शंकर ब्रह्मा जितने देवी देवता हैं वो लोग भगवान के दास दासी हैं, दास दासी हैं, जो कुछ देते हैं भगवान की कृपा से देते हैं, इसलिए कृष्ण का भजन करने से देवता लोग भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। शास्त्रों में इसके बहुत से प्रमाण, गीता इत्यादि में सब जगह इसका समर्थन किया गया, इसलिए कृष्ण का भजन करने से, कृष्ण का नाम करने से सब देवता देवी, जितने 84 लाख देवता देवी देवता हैं, समस्त जीव हैं, सबकी प्रसन्नता होती है एक कृष्ण का भजन करने से। भक्ति कैसे होगी? केवल मत्था टेकने से नहीं होगा, मत्था टेक करके जो हमारा बेटा ठीक हो जाए, हमारा बेटा पास हो जाए, हमारा बिजनेस ठीक हो जाए, ये भक्ति नहीं है, ये तो भगवान को ठगना है। इससे हमारा दुख सुख सब दूर नहीं होगा, आया टेक दिया मत्था और 5 आने का बताशा दे दिया ठाकुर जी को और उनसे कहा कि हमारे बाल बच्चे सब समय के लिए सुखी हो जाए, तो वो 5 पैसे के बताशा पर ठगने वाले नहीं है, इसको अच्छी तरह से समझो। इसलिए भक्ति किसको कहते हैं इसको समझो, एक दिन में तो मैं समझा नहीं सकता किंतु थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूं। कैसे? इसको चैतन्य चरितामृत में बतलाया गया, हम जन्म जन्मांतरों से जब से सृष्टि हो रही है हम भूल करके इस शरीर को ही मैं मान लिया जो मैं हूं, इस हाड़ चाम रक्त मांस पैखाना और टट्टी के इस पुलिंदे को हमने मान लिया कि हम मैं यही हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बाप हूं, बेटा हूं, हम किंतु यह गलत, इसके अंदर में आत्मा है और उसका परम परमात्मा है कृष्ण है, सबके अंदर है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लगा। देखो भले भूले भटके लाखों जन्मों से कोई संभावना नहीं है कि हम भगवान का इस जन्म में स्मरण करेंगे, सभी तो इस शरीर को खुश करने में, खिलाने पिलाने में, शरीर से संबंधित व्यक्तियों के प्रति आसक्ति रखने वाले हैं, सस्ती नहीं है भक्ति, इस भाव सागर से 99 के फेर से निकलना बड़ा भारी कठिन है, बहुत भारी कठिन। जब तक संसार की तमन्नाएं हैं, इच्छाएं हैं और शरीर पर आसक्ति है जब मैं यही हूं, तब तक तो भगवान बहुत दूर, इसलिए भगवान बड़े दयालु हैं, कभी कभी स्वयं कृष्ण आते हैं, कभी राम के रूप में आए, कभी नृसिंह भगवान के रूप में, कभी बराह के रूप में ऊपर से उतरते हैं। किस लिए? इसलिए कि जगत के भूले भटके जीव हमारे दर्शनों से, हमारे विचारों से, हमारी कृपा से हमारे तरफ में आ जाए और सुखी हो, किंतु जीव सहज ही नहीं समझना चाहता, कभी भी अपना अहंकार ये छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए गुरु जी भगवान शब्द के रूप में, नाम के रूप में उतरते हैं और सारी शक्तियाँ इन नामों में दे देते हैं, भर देते हैं, जो स्वरूप से कृपा नहीं करते वो नाम के द्वारा कर सकते, इसलिए ये नाम भगवान का शाब्दिक रूप है, बड़ा दयालु नाम, जो इच्छा वही कर सकते हैं नाम के बल पर कर सकते, इसलिए बताया कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, नित्य काल से भगवान को भूले हुए शरीर में आसक्ति हुए हम संसार में घूम रहे हैं, कभी सुकर कभी गधे कभी जीव कभी देवता कभी गंधर्व कभी ब्रह्मा भी हो सकते हैं, इस तरह से हमारा जीवन चल रहा है। यदि इस जन्म में भगवान का भजन नहीं किया तो फिर जीवन मनुष्य जीवन बेकार हो जाएगा, 84 लाख जोनियों में घूमना, इसलिए गुरु कृष्णम प्रसादे पाए, इसके दो अर्थ हैं। गुरु ही कृष्ण हैं, कृष्ण ही गुरु हैं, कृष्ण ही गुरु हैं। भगवान की कृपा भक्तों के कृपा की अनुगामिनी होती है। गुरु को भगवान ही समझो। गुरु कौन है? सेवक भगवान है। वो भगवान को दे सकता है। जो उच्च कोटि का भक्त है परम, ऐसे तैसे गुरुओं से नहीं होगा। जो सिद्ध लोग नहीं हैं, जिसकी आत्मा की अनुभूति नहीं है, वो गुरु गुरु नहीं है। जिसको आत्मा की अनुभूति हो, परमात्मा की अनुभूति हो, जो भगवान के भजन के द्वारा अपने स्वरूप की उपलब्धि कर चुका है, ये लोग नारद जी देश कर दिया जाओ भक्ति हो जाए। सुखदेव गोस्वामी कहें, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी कहें, भक्ति हो जाओ, ये लोग गुरु हैं। ऐसे गुरु के लिए कहा गया है, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। भक्ति लता का बीज क्या है? भक्ति को यहाँ पर एक लता से तुलना दी गई। भक्ति लता है ना, उसका बीज होगा, वो बीज क्या है? ये जो गुरु देता है। कृष्ण सेवा की वासना को देने वाला यही गुरु होता है। अपनी हरि कथाओं से बतलाएगा, भगवान की सेवा के बिना तुम पशुओं में भी गधे हो। इसलिए भगवान का भजन करने से तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा, नित्य काल के लिए सुखी और शांति तुम्हारे हाथों में आ जाएगी। इसलिए भगवान की सेवा, ये बीज कौन देता है? वो गुरु देता है, या कृष्ण ही गुरु होकर के देते हैं। गुरु कौन है? कृष्ण की सारी कृपा एकत्रित होकर के गुरु बनती है। इसलिए गुरु को साधारण मत समझो, और गुरु भी वैसा ही होना चाहिए। तो यह भक्ति लता का बीज देता है। यह माली हो या सेई भी करे आरोपण, स्वयं माली बनता है जी। और जो गुरु जी ने बीज दिया कृष्ण की सेवा की वासना, तो वो क्या करता? अपने हृदय में बो जाता है इस बीज को, और पानी सिंचन करता है। पानी माने क्या? श्रवण कीर्तन जले करे नित्य, अपने से उन्नत वैष्णव के संग में हरि कथा का श्रवण करता है, कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करता है, राम की लीलाओं का श्रवण करता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतारण की जो लीलाएं हैं, मधुर लीलाएं हैं, उसका श्रवण, उसके साथ साथ में भक्ति लता बढ़ती जाती, अंकुरित होती है। अंकुरित होकर के धीरे 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 इस ब्रह्मांड को पार कर जाते। माने क्या? ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड में जितनी प्रकार की इच्छाएं जगत में है, सब इच्छाओं को त्याग कर दे। भगवान का भजन करने से, नियमित रूप से गुरु पदाश्रय करके, गुरु जी का, शुद्ध गुरु का पदाश्रय करके, उनसे शिक्षा ले करके जो भजन करेगा, जरूर उसको संसार से विरक्ति आएगी और कृष्ण का तत्व ज्ञान उसके हृदय में आएगा, अवश्य ही होगा। भजन करने से संसार के प्रति यदि विरक्ति नहीं आती, ऐसे गुरु को छोड़ दो। या तो गुरु में दोष है, नहीं तो हमारे में दोष है। उस गुरु में यदि वो स्वयं ही नहीं ऐसा है जो भजन करता है, ऐसे गुरु को छोड़ो जिससे दोष है। या तो तुम में दोष है, तुम ठीक से नहीं कर रहे। इसलिए सचेत होकर के जो अवगुण है, दोष है, उनका दूर करो और अच्छी तरह से भगवान करो। और नहीं तो गुरु में दोष है, यदि कृष्ण मंत्र नहीं देते, भगवत मंत्र नहीं देते, और वह मंत्र शास्त्र समर्थित नहीं है, उसके द्वारा हमारा कल्याण नहीं होगा, उस गुरु को भी छोड़ देने का शास्त्र में लिखा गया है। उस गुरु को छोड़ो जिसके द्वारा हमको शांति नहीं हो रही, भगवान का भजन नहीं होता, मन नहीं लगता और विरक्ति नहीं आ रही, और तत्व ज्ञान है, ऐसे गुरु को छोड़ो। ऐसे गुरु को करो जो कृष्ण का भजन की शिक्षा दें, उसमें चित्त लगे और अनुभूति हो, एक आदमी है भोजन करता है, भोजन करते करते पूरा भोजन कर लिया तभी उसकी भूख नहीं गई और उसको तृप्ति नहीं हुई और खाने की इच्छा होती है, समझो उसको भूख लगा हुआ है, रोग है कोई, खाने में पेट नहीं भरेगा ऐसा तो हो नहीं सकता, और खाने की इच्छा बनी रहे, आ रहा है समझ में, भोजन करो प्रति ग्रास के साथ साथ में तुम्हारी भूख भी कमती जाएगी और पूरा भोजन कर लेने के बाद में बेकार आएगा और देन अब भाई अब नहीं खाए। यदि ऐसी तृप्ति नहीं आई, इंद्रियां सबल नहीं हो गई और भूख की अभी स्पृहा नहीं गई तो समझो जैसे ये भूत खा रहा है, कोई रोग है। उसी तरह से भगवान का नाम कर रहे हैं, भगवान का तत्व ज्ञान नहीं हो रहा और संसार से आसक्ति नहीं जा रही, समझो जो हमारे भजन में दोष है, नहीं तो भजन को जो बतलाने वाला है उसमें दोष है। तो यदि बतलाने वाले गुरु में दोष है तो ऐसे गुरु को नमस्कार करो। सुना है ना, जो बलि महाराज ने अपने गुरु को छोड़ दिया शुक्राचार्य को, उन्होंने कहा जे भगवान को मत दो, ये तुमको दरिद्र बना देगा, तीन पग जमीन देने की बात थी। शुक्राचार्य ने कहा ये विष्णु है तुम्हारा सब कुछ ले लगा, इसको मत दो ना तुम्हारा सर्वनाश हो जाए। उन्होंने कहा कि हम ऐसे गुरु की जरूरत नहीं छोड़ी, भगवान का सर्वस्व है उनको हम देंगे। उसने मना किया, उन्होंने कहा हम ऐसे गुरु की जरूरत नहीं। बलि गुरु तजऊ बन
संत बज बनिता,
ऐसा लिखा गया है,
जिनके प्रिय न
राम वैदे, जिनके प्रिय न राम वैदे, सीता और राम जिनके प्रिय नहीं है, राधा और कृष्ण जिनके प्रिय नहीं है, ऐसे परम बंधु को भी छोड़ो। भरत जी ने अपनी मैया को त्याग कर दिया सदा के, पिता का प्रहलाद जी ने अपने पिता का प्रत्याग कर दिया, गुरु को प्रत्याग किया बलि महाराज जी ने, इस ब्रज की वनिताओं ने, स्त्रियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया कृष्ण के लिए, उनका मंगल ही मंगल। इसलिए इन सब पर विचार करके चलना होगा। यदि आप सुख और शांति चाहते हैं, जन्म जन्म की जरणमाला के क्लेश को दूर करना चाहते हैं तो राधा कृष्ण का भजन, यह है ब्रह्मांड का विचार। इसलिए भजन वो जो लता है, भक्ति लता, भजन करते करते संसारिक विचारों से ऊपर उठ जाएगी, संसारिक कोई तरह की कामना नहीं, इसके बाद में वो लता कहाँ जाएगी, बैकुंठ में जाएगी। माने क्या, बैकुंठ में जाएगी, बैकुंठ में पहुंचेगी और उसके ऊपर भी चली जाती है, लक्ष्मी नारायण की उपासना को भी छोड़ करके, राम की उपासना छोड़ करके भी, द्वारका में कृष्ण की उपासना छोड़ करके वो कहाँ जाती है, गोलोक वृंदावन। उसकी पांच डाले हैं, पांच डालों में सर्वत उन्नत जो डाल है वो क्या है, गोपी प्रेम की डाल, गोपियों की कृष्ण के प्रति जैसा प्रेम है, सर्वस्व कृष्ण के चरणों में निछावर होकर के कृष्ण के लिए लोक लज्जा धर्म अधर्म सब कुछ छोड़ देती है, वो प्रेम माया। हमारी लता वहाँ पर पहुँच गई, पहुँच करके कृष्ण के चरणों का आश्रय करके वहाँ से प्रेम फल फलता और वो पृथ्वी में आता है, जय साधक है। साधक उन फलों का आस्वादन करके, लता को अवलंबन करके लोक वृंदावन पहुँच जाता है और नित्य काल के लिए सुखी। किंतु इसी बीच में यदि अपराध हस्ती उठे माता, छिंडे वा उपाड़े तार सुख जाए, भाई एक इसमें विचार है, यदि भजन कर रहे हैं, शुद्ध गुरु नहीं मिला और तरह तरह की संसार की कामनाएं हैं तो ये लता नहीं बढ़ेगी, भक्ति की लता अंकुरित ही नहीं होगी, बढ़ने की तो बात क्या। और यदि वैष्णव की निंदा की, भक्तों की निंदा की तो भगवान इसको सह नहीं सकते, वो अपराध रूपी हस्ती उसे उखाड़ करके फेंक देगी लता। उसमें दो प्रकार की बातें हैं, भक्ति जब होती है तो उसमें श्रवण कीर्तन इत्यादि जब करते हैं तत्व ज्ञान आने लगता है, एक बड़ी विचित्र बात होती है, वो विचित्र बात यह है कुछ उपशाखाएं उठती हैं उसके साथ साथ, अर्थात प्रतिष्ठा की भावना। भगवान का भजन करते हैं प्रतिष्ठा की भावना यदि लगी रहे, संसार की आसक्ति बनी रहे, संसार की कोई चीज की इच्छा हो, तो क्या होगा, भक्ति लता को बढ़ने नहीं देगी। इसलिए उन लताओं को उखाड़ करके फेंक देना है, किसी प्रकार की संसारिक आसक्ति न हो, देह के प्रति आसक्ति मैं और मेरे की बुद्धि न हो, अभिमान न हो, और किसी चीज की संसारिक कोई इच्छा न हो। यदि होगी तो उसको क्या करे, धन अर्थ रुपया पैसा दिला दे और वहीं से समाप्त हो जाए। वैकुंठ जाने का ये तात्पर्य है, मुक्ति इत्यादि न मिल जाए, मुक्ति से बस उसी में रह गए, भक्ति बढ़ी नहीं। यहां तक कि उसकी जड़ों से कुछ उपशाखाएं उठती हैं, वो उपशाखाएं क्या हैं, नारायण की उपासना, लक्ष्मी नारायण की उपासना और सब देवताओं की उपासना, उन सबको काट देना, छांट देना, उससे ऊपर और गोलोक, गोलोक में यहाँ तक द्वारकाधीश की भी भक्ति है, राम की भी भक्ति है, उसको प्रणाम करो, छांटो मत, वो एक ही तत्व है, इसलिए और आगे बढ़ जाओ। और कृष्ण में गोपियों जैसी भक्ति हो, आराध्य भगवान ब्रजेश रम्या का चुपा बजु बदन पर गई या कल्पिता श्रीमद भागवतम प्राण अमलम प्रेम वर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही हमारे आराध्य हैं, वे कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, इसलिए कृष्ण का भजन, उनका भजन करने से सारे देवा देवता देवी सभी प्रसन्न हो जाएंगे, उनके भजन करने से राम इत्यादि सभी का भजन करना। दूसरी बात, जो वृंदावन में कृष्ण का भजन करो, वृंदावन में उनकी गोपियों ने जिस प्रकार से आराधना की, सर्वस्व कृष्ण के चरणों में दे दिया, या प्रेम खाई अक्षर का पढ़ा सो पंडित को और बाकी सब मूर्ख है। ये कृष्ण क्या है, ये प्रेम की मूर्ति है, इस प्रेम को दान करने के लिए जगत में आए, और उन्हीं का जो गौ रूप है, राधा जी का भाव और कांति लेकर के जो आए, बड़े दयालु, कृष्ण प्रेम देने के लिए आए, हमें कृष्ण की आवश्यकता नहीं है, जो कृष्ण हमसे मिले, प्रेम की जरूरत है। अरे कृष्ण तो उनको जरासंध को कंस को भी मिले, अगासुर बकासुर पुतना को भी मिले, किंतु क्या हुआ, वो लोग उनको मारना चाहते थे। विषम पितामह का भी देखो, उनके अंदर में अशोक घुस करके उनसे युद्ध करा रहा, इसलिए प्रेम चाहिए। प्रेम नहीं है तो नंदलाला नहीं मिलेंगे, अभी हमारा प्रेम है हमारे अंदर, विकसित नहीं है और अपने आसक्ति के रूप में संसार में लगा हुआ है, शरीर के प्रति लगा है, इसे सुख नहीं है, इसलिए अभी ममता को हटाओ। एक बार एक परिवार के लड़के की शादी होनी थी, परिवार का मालिक वर का पिता सब अपने आत्मीय स्वजनों को निमंत्रण दिया, कल बारात चलनी है शाम को और सुबह में शादी होनी है, लग्न है सुबह में 4 बजे चलना है। गंगा के किनारे वो स्थान था दोनों का, वहीं गंगा के किनारे से और चलना है, और गंगा के किनारे किनारे उस स्थान में पहुंच करके सवेरे शादी होने वाली है 4 बजे। सब बारात तैयार होकर आई, दूल्हा भी बैठा और एक बड़े नौका बहुत बड़ी, और वो की गई, उसमें बाई जी को भी लिया गया और खाने पीने की सारी सामग्री भी उसमें भर दी गई, और नौका वाले से कहा कि देखो हमको सवेरे 4 बजे से पहले 3 बजे पहुंचना है, 4 बजे विवाह का मुहूर्त है। कहा कोई बात नहीं बाबूजी, आप हमें थोड़ा सा अफीम देंगे, गांजा और भांग दे देंगे और हम लोग जल्दी से जल्दी खे करके नौका वहाँ पर पहुँचा देंगे। सूर्यास्त होते ही नौका खोलेंगे और ठंडे ठंडे में हम पहुँच जाएंगे। नौका में सभी चढ़ गए, बाई जी का कीर्तन और नित्य आरंभ हुआ, तबला ठनकने लगा, साथ साथ में गंजा और ये भी चलने लगा और उनको भी गंजा भांग दे दिया, वो भी नशे में धूप धो करके चलाने लगे। रात भर बड़ी तेजी से नौका चली। जब सवेरे 3 बजा 4 बजा तो मालिक ऊपर उठ करके आया, देखा नौका के ऊपर में, अरे भैया जहाँ हम थे वहीं पर तो ये पेड़ दिख रहे हैं, वही घाट है, वही है, हम पहुँचे नहीं, ये क्या बात है। उन्होंने उसको बुलाया, अरे भाई तुमने नौका चलाई नहीं। अरे बाबूजी देख रहे हैं कि हम पसीने से तरबर हो गए हैं और नौका बड़ी तेजी से चला रहे हैं। अच्छा तो ये नौका क्यों नहीं आई, अरे तुमने नंगर उठाया क्या। तो बाबूजी यही भूल हो गई, नंगर नहीं उठाया और नौका घूम रही है किंतु आगे नहीं बढ़ रही। क्या चीज़ है ये संसारी का, मैं और मेरे अकाधी, इसलिए इसको उठाओ नंगर को और भगवान को भजन करो और नहीं तो सुविधा कुछ नहीं होगा, संसार के पचड़े में भी पड़े रहे। कोई ठाकुर जी का चौटका ढवाया, गणेश जी को प्रणाम किया, आज हे गणेश जी हमको सब सिद्धि दी, उधर सब जगह मत्थाना है उसे को। इसलिए भक्ति किसको कहते हैं, अन्ना अभिलाषिता, जितनी संसारी का अभिलाषाएँ हैं सबको छोड़ो, ज्ञान कर्म योग तपस्या जितना है सबको हटाओ, शुद्ध रूप में अपने समस्त इंद्रियों से सब प्रकार की भावनाओं से रूप प्रदर्शय करके कृष्ण के चरणों में श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन इत्यादि जो विधियाँ दी गई हैं ऐसा करो, कुछ ही दिनों में शांति होगी, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, इस जीवन में भी सुखी रहेगे और पर जीवन में भी सुखी रहोगे। यही समस्त कथा का सार है जो एक दिन में मैं कहूँ। इसलिए सारे लोग मिल करके भगवान का नाम करेंगे, कौन सा नाम, मंत्र ही नहीं महामंत्र, जैसा उन्होंने बताया इस मंत्र के करने से सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो गया। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे।
Thus ends the class on the 6th of April 2002 in the evening in South Delhi, Srinivaspuri Mandir. Hare Krishna.